اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں 21واں، ٹھیک ہے جی. 21واں چیپٹر کا عنوان تھا روشنی کی قسمیں، ٹھیک ہے جی. یہ روشنی کی قسمیں جو چیپٹر ہے، اس میں ہم نے کل جو ذیلی چیپٹر پڑھ رہے تھے وہ تھی ملکوتی صفت اور بشری صفت. ملکوتی یعنی فرشتوں والی اور بشری یعنی انسانوں والی، بشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پیج نمبر 176 پہ یہ جو پیراگراف ہے، میں اس کا شروع سے آغاز کر رہا ہوں، یعنی اوپر پہلی سطر سے. یہ جو کائناتی نظام ہے یہ دو رخوں پہ قائم ہے، ایک زمانیت اور ایک مکانیت. اب زمانیت اصل ہے، یہ پیج 176 پہ. زمانیت اصل ہے اور مکانیت اس اصل کے اوپر بنے ہوئے نقش و نگار کا نام ہے. زمانیت اس اصل یعنی اس کی، یہ جو اس کا اوریجن ہے وہ زمانیت ہے. ساری مکانیت کا اوریجن ہے زمانیت. مکانیت کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے. یہ جو ہمارے سامنے جو چیزیں بھی نظر آ رہا ہے یہ سب سپیس ہے، مکانیت ہے، اس کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے. لیکن زمانیت جو کہ اس مکانیت کی اصل ہے، سپیس کی اصل ہے، وہ ٹائم ہے. زمانیت سے مراد ٹائم. تو یہ زمانیت یعنی ٹائم جو ہے وہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے کہ زمانیت کیوں نہیں نظر آتی، کیونکہ وہ نسمہ ہے. نسمہ روشنی ہے، روشنی اصل میں خلا ہے. مکانیت اس کے برعکس وجود ہے، حرکت ہے. اور حرکت دراصل کیا ہے؟ حرکت ایک ایسا مظاہرہ ہے جس کو مادی آنکھ دیکھ لیتی ہے. یعنی ہوا چلتی ہے، حرکت ہوتی ہے اس میں، لیکن پتے ہلتے ہیں، تو یہ مادی مظاہرہ ہو گیا. اب نسمہ مرکب مکانیت میں جیسے جیسے دلچسپی بڑھتی ہے، اسی مناسبت سے نسمہ میں روشنیوں کا ہجوم زیادہ ہوتا رہتا ہے. یعنی جس طرح سے ہماری مکانیت یعنی نسمہ مرکب، اسے نسمہ مرکب کہتے ہیں مکانیت کو. آگے نسمہ کی تین قسمیں ہیں، اس میں سے جو مرکب ہے جس سے ہمارا یہ مادی وجود تخلیق ہو رہا ہے یا بنیاد بن رہا ہے، اس میں ہماری دلچسپی بڑھتی ہے، اسی مناسبت سے نسمہ میں روشنیوں کا ہجوم بڑھتا رہتا ہے. روشنیوں کے ہجوم کے بھی دو مراتب ہیں، ایک کو عین اور دوسرے کو مکان کہتے ہیں. یعنی ایک کم درجے کا ہجوم ہے اور دوسرا اس سے بھی زیادہ گاڑا ہے. عین جو ہے اسی کو ماہیت کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی جو حیثیت ہوتی ہے، جو اس کی فارم ہوتی ہے، اس کو عین کہتے ہیں. اور مکان مظہر ہے، مکانیت سے مراد ہے مظہر، کوئی چیز جس حالت میں بھی ہمارے سامنے آ گئی. مادی ماہیت نظر نہیں آتی، چیز نظر آتی ہے. دیکھیں اس باریک فرق کو سمجھیں کہ جو بھی چیز ہمیں دکھ رہی ہے، ہمیں اس کی ماہیت نہیں نظر آ رہی کہ اس کی حیت اصل میں کیا ہے. ہمیں وہ حیت جس شکل میں سامنے آئی ہے وہ نظر آتی ہے. مثلا اب ایک چیز ہے، اس کی خاصیت ہے ٹھنڈ پہنچانا، چیز نظر آتی ہے، ٹھنڈ نظر نہیں آتی. دیکھیں کیا مثالیں آ رہی ہیں، لیکن محسوس ہوتی ہے. اب گلاب کے پھول نظر آتے ہیں لیکن ان کی خوشبو نظر نہیں آتی. ہم جب خوبصورت آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی صورت نظر آتی ہے لیکن اس کے حسن کی کشش نظر نہیں آتی. اب بعض لوگ کہ حد و خال اور فیچرز کو اتنے اچھے نہیں ہوتے لیکن آپ ان میں کشش محسوس کرتے ہیں، تو وہ کشش نظر نہیں آ رہی لیکن محسوس ہو رہی ہے. तो ये नशमा के दो मरातब हो गए, एक ऐन हो गया और एक मकान हो गया। जो नजर आ रहा है वो मकानियत है, मकान है, और जो महसूस हो रही है वो ऐन है। यहां से वो ऐन की बात समझ आ गई। अब कायनात की हर शय में हिस है, यानी हवास है, उसमें हवास हिस की जमा है, और हर चीज की हिस, जो भी हिस हो, देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, छूने की, हर चीज की हिस, कोई भी हिस हो, वो दो रुखों पर कायम है। एक रुख उसका बातिन है और दूसरा रुख उसका जाहिर है। हर हिस के दो रुख हैं। अब ये जहन बनाते जाएं कि एक चीज, जो भी हम हिस्सियात इस्तेमाल कर रहे हैं, एक इनका बातनी रुख है, एक इनका जाहिरी रुख है। अब ये बातिन क्या है? ये बातनी रुख जो है ये जमानियत है, टाइम है, और जाहिर रुख जो है ये मकानियत है। अब इन बातों को आपको तवज्जो देकर इसे तकरार करनी है जहन में, तो फिर ये जहन नशीन होती चली जाएंगी। बच्चे जैसे पहाड़े याद करते हैं ना, समझ आए ना आए, पहाड़ा याद करना जरूरी है, तभी जाके आदमी मैथमेटिक्स के बड़े बड़े मसले हल कर लेता है। तो ये टर्म्स जो हैं ये आपको याद करनी है कि बातिनी रुख जो है ये जमानियत है और जाहरी रुख जो है मकानियत है। जब भी हम किसी चीज की हयात के बारे में तस्करा करते हैं तो हमारा मंशा असल में क्या होता है कि जिंदगी के दो रुखों को बयान करना होता है। जब हम जिंदगी का तस्करा कर रहे हैं तो असल में हम दो रुखों को बयान कर रहे हैं। वो दो रुख क्या है? एक रुख जमानियत है, दूसरा मकानियत है। ये सारी जिंदगी इन दो रुखों पर चल रही है। यानी इसका खुलासा क्या बना कि भाई जिंदगी जो है ये दो रुखों पर है, जमानियत असल है और उस असल के ऊपर जो नक्शो निगार बने हैं वो मकानियत है। वो पहला जुमला जो है सफ़े का, उसी की तकरार, उसी को जहन नशीन कराया जा रहा है, किसी तरह ये बात हमारे अंदर बैठ जाए। तमाम नक्शो निगार और इंसानी जिंदगी की जिस्मानी हरकात और सकनात ये मकानियत है, और इंसानी जिंदगी के ये नक्शो निगार और आमाल जिस बिसात पर कायम हैं, जिस बुनियाद पर बने हुए हैं, वो सब जमानियत है। देखें, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि वो जहन नशीन हो जाए। इससे घबराने की बात नहीं है, इससे कोई बोझ लेने की बात नहीं है। एक सिंपल सी बात कही जा रही है कि जिंदगी के दो रुख हैं, मकानियत और जमानियत। जमानियत असल है, मकानियत उस पर बेस्ड करती है, यानी उसकी बुनियाद पे, जमानियत की बुनियाद पे मकानियत है। बार बार वही जुमले चल रहे हैं। जिंदगी का कोई अमल, कोई नक्श, कोई हरकत जमानियत की बिसात के बगैर मौजूद नहीं है। जमानियत मादी आंख से उजल है। जमानियत ही का इस्तलाही नाम जो है वो नस्मा है। इसी जमानियत को नहीं हम समझ रहे, और नस्मा के लफ्ज के बारे में अपने कोई बने हुए कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसमें डाल रहे हैं। अगर ये समझ आ जाए कि जो दाखली रुख है, बातनी रुख है, वही नस्मा है और वही जमानियत है। देखें, साफ लिखा है इसमें, मैं अपने पास से नहीं कुछ अर्ज कर रहा, साफ लिखा हुआ मुर्शिदे करीम ने कि जमानियत का इस्तलाही नाम, यानी इस टर्मिनोलॉजी को नस्मा का, या नस्मा की टर्मिनोलॉजी जो है वो असल में जमानियत को इंडिकेट करती है और वो बातनी रुख है। अब नस्मा मजीद वजाहत क्या है कि वो ऐसी रोशनी है कि दो सिमतों में सफर करती है। उनमें से वो दो सिमतें क्या है? एक है गुरेज और एक है कशिश। ये गुरेज और कशिश, कल थोड़ा सा इस पर हमने बात की कि हम घर से बाहर जाते हैं क्योंकि हमें बाहर की कशिश घर से बाहर खींच रही है, हम घर से गुरेज कर रहे हैं और बाहर की कशिश में मुब्तला। बाहर जाके सौदा खरीदा तो फिर घर की तरफ वापस पलटे, तो वहां से हमने क्या किया, अब बाजार से गुरेज कर रहे हैं और घर की कशिश में मुब्तला होकर घर जा रहे हैं। इसी तरह हमने अल्लाह के जहन से जब हमारी शुआओं ने, रोशनियों ने, नस्मा ने, नूर ने वहां से गुरेज किया तो निचले जोन्स में आ गए, फिर वहां से गुरेज किया उससे निचले जोन में, वहां से उससे निचले जोन की कशिश हमें खींचती रही खींचती रही, हत्ता कि हम जमीनी कशिश में आकर सारे मराहल से गुरेज करके यहां तक पहुंच गए। अब जब यहां से गुरेज करेंगे तो गोया वापसी की कशिश हम पे हावी होती चली जाएगी और हम तबकन अन तबका यानी दर्जा ब दर्जा ब दर्जा ऊपर को चढ़ते चले जाएंगे। इंसान की जात, अब इंसानी जात क्या चीज है, ये रोशनियों का मजमुआ है। अब याद रखें कि रोशनियों से क्या मुराद है, तसव्वुरात। तो इंसान क्या है, इंसानी जात क्या है, ये तसव्वुरात का मजमुआ है, कॉन्सेप्ट्स का। मेरे अपने बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरी जात है, आपका अपने बारे में जो भी तसव्वुरात हैं वो सब आप की जात है। जात में जो रोशनियां काम कर रही हैं, अब देखें उनकी बाबत बता रहे हैं, उन रोशनियों के अंदर मुसलसल दो हरकतें वाकया हो रही हैं। एक हरकत कशिश है यानी इंसान अपनी बिसात की तरफ खिंच रहा है, और दूसरी हरकत ये कि इंसान जिंदा रहने के लिए रोशनियां अपने अंदर जज़ब कर रहा है। यानी एक इंसान अपनी बिसात की तरफ खिंच रहा है और दूसरी हरकत ये यानी बिसात उसे खींच रही है, बिसात की कशिश, और दूसरी तरफ इंसान की कशिश वहां से रोशनियों को अपने अंदर जज़ब कर रही है। अब वो हरकत जो उस हस्ती की तरफ खींच रही है जिस हस्ती के हुक्म से कायनात वजूद में आई है, इस कशिश का नाम मलकूती सिफत है। वो हरकत जो हमें अल्लाह की तरफ खींचती है, इस सिफत का नाम मलकूती सिफत है, फरिश्तों वाली सिफत है। और वो रोशनी जो गुरेज की शक्ल में अनवार से दूर कर रही है, जाहिर है कि हम तजल्ली से दूर होकर अनवार में आए और अनवार से दूर होकर रोशनियों में, रोशनियों से दूर होकर रंगों में, रंगों से दूर होकर मादी अनासर में। तो वो रोशनी जो गुरेज की शक्ल में नीचे को आ रही है वो सिफत बशरी है। ये है फर्क। अब देखिए क्या कमाल तारीफ कर दी मलकूतियत की और बशरियत की, कि अगर बंदा अल्लाह की तरफ खींच रहा है तो ये मलकूती सिफत हुई, ये है फरिश्ता होना। कशिश अल्लाह की तरफ है तो आप का पूरा निजाम मलकूती हो गया, और अगर गुरेज की सूरत में अनवार से दूर कर रही है तो ये सिफत बशरी है। अब इन दोनों सिफात में हर सिफत एक कायदे और जाब्ते की पाबंद है। ये जो कशिश और गुरेज हैं इनके अपने जाबते और कायदे हैं। आदमी जितना गुरेज में यानी खारजी दुनिया में मुस्तगरक हो जाता है, ये लफ्ज सुने जरा, मुस्तगरक होना, मुस्तगरक का क्या मतलब है, गरक होना, गरक से है ये लफ्ज, गरक यानी डूब जाना। जितना उसका इनहमाक खारजी दुनिया में होगा, गुरेज में होगा, उसी मुनासबत से वो कशिश की रोशनियों से दूर हो जाता है। अब देखे ना, ये कहा जाता है अल्लाह की तरफ ध्यान रखो, दुनिया को मत तवज्जो दो, बस इतनी ही सी बात की असल साइंसें बताई जा रही हैं। इसके पीछे असल बात क्या है कि ये गुरेज कर रहे हैं, वहां से हमें कशिश में जाना है, जहन को कशिश का के जेरे असर लाना है ताकि हमारा जहन मलकूती सिफत यानी अल्लाह की तरफ खींचे। रोशनियों से दूर होने के बायस यानी जितना गुरेज में यानी खारजी दुनिया में मुस्तगरक होता है, उसी मुनासबत से कशिश की रोशनियों से दूर हो जाता है। कशिश की रोशनियों से दूर होने के बायस अनवार जाया होते रहते हैं, ये नुकसान है। और आदमी गुरेज के जितना करीब होता है उसी मुनासबत से उसके अंदर सिफत मलकूतियत कम से कम हो जाती है। अब हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि इर्द गिर्द के माहौल में जज़ब रहें, ध्यान रखो, ये करो वो करो, क्या वो खारिज में ज़्यादा उनकी तवज्जो मबजूल रहती है। नतीजा जब वो किसी रूहानी सिलसिले में जाते हैं वहाँ से उनको तरबियत देने की कोशिश की जाती है कि खारिज को तवज्जो ना दो तो कहते हैं निज़ाम कैसे चले। यहाँ से सारी पूरी गड़बड़ का शाखसाना ये कशिश और गुरेज की कदरों को ना समझना है। क्या होता है कि जूं जूं इंसान गुरेज के करीब होता है यानी खारजी दुनिया में करीब होता है उसी मुनासबत से उसके अंदर सिफत मलकूतियत कम से कम हो जाती है। नतीजे में वो आलम मलकूत से इतना दूर हो जाता है कि उसके इल्म में ये बात ही नहीं रहती कि इंसान की एक सिफत मलकूतियत भी है जो फिल वाक्या इंसान की असल है। हमारी असल क्या है? ये सिफत मलकूतियत जिससे हम हटे हैं, जिससे हमने गुरेज किया है। अब एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान सिराते मुस्तकीम से इतना दूर हो जाता है कि उसकी तमाम दिलचस्पियां, क्या तमाम दिलचस्पियां मकानियत में मुजतमा हो जाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो सिफत मलकूतियत से इनकार कर बैठता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके दिलों पर मोहर कर दी, कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए और उनके लिए अजाब अलीम है। अलीम मतलब अलमनाक, दर्दनाक, यानी अजाब कहते हैं सिस्टम से आउट कर दिए जाने को। अजाब अलीम से मुराद ये है कि वो सिफत मलकूतियत से महरूम कर दिए गए। सिफत मलूकियत, ये मलूकियत लिखा हुआ है, माफी चाहता हूं मैं, मलूकियत मलूक ये लफ्ज ही मुझसे गलत हो गया। मलकूतियत, मलकूतियत ये इमला गलत है क्योंकि मलूकियत जो है वो और चीज होती है, वो मल मतलब है कि क्या कहते हैं उसको, मलकियत से है लफ्ज, ये मलक से है, मलक से मलकूतियत होती है। ये सिफत की इसकी इमला ठीक कर लीजिएगा, वो सिफत मलकियत नहीं मलुक से महरूम कर दिए जाते हैं। आलम मलकूत और आलम नासूत, आलम मलकूत जो हमारी असल है और आलम नासूत जिसमें हम आए हुए हैं, यानी जाहिरी रुख हमारा आलम नासूत है, बातनी रुख आलम मलकूत है। मैं जिंदगी गुजारने के फार्मूले की मजीद वजाहत सुन लें कि रोशनियों की एक मुतायन मकदार है, यानी उनकी मकदार मुतायन है, तयशुदा है, और वो मकदारें ऐसी हैं जो मलुकियत मलकूतियत यहाँ ठीक लिखा हुआ, मलकूतियत और बशरियत का तवाजन बरकरार रखती है। रोशनी के तवाजन में अगर मकदार कम हो जाए यानी तवाजन अगर बिगड़ जाए तो हैवानी और मादी तकाजे बढ़ जाते हैं। क्या होता है अगर रोशनियों का तनासब खराब हो तो क्या होता है, आदमी में हैवानी और मादी तकाजे बढ़ जाते हैं। ये बात जहन नशीन रखना जरूरी है कि सिफत मलुकियत मलकूतियत जो है आलम अमर में सऊद करती है, ये फरिश्तों वाली सिफत जो है ये आलम अमर की तरफ सऊद करती है यानी ऊपर को जाती है, यानी इंसान के अंदर बशरी सिफत के मुतजाद मलकूतियत जो है ऐसी सिफत है जो इंसान को हाकिम मुतलक अल्लाह की तरफ खींचती है और अल्लाह की तरफ खींचना ही आलम अमर में सऊद है। आलम अल्लाह की तरफ खींचना, अल्लाह की कशिश को महसूस करते हुए उसको फ्लो उस फ्लो में चले जाना, ये सऊद है। इसके बरक्स जब इंसान के अंदर बशरी तकाजे बढ़ जाते हैं और मकानियत में इस्तगराक بڑھ جاتا ہے تو صفت ملکوتیت کی جگہ مادی تقاضے یا دنیا میں دلچسپیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آدمی یعنی انسان عالم ناسوت میں قید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تھا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جیسے ہی ذہن ماورا ہستی سے دور ہوا یعنی اس نے گریز کیا, روشنیوں کا توازن بگڑ گیا اور آدم کے اوپر بشریت کا اظہار ہوا تو آدم نے خود کو ننگا محسوس کیا اور آدم نے اپنے اوپر کثافتوں کا بوجھ محسوس کیا. کثافتوں کے اس ہجوم کی وجہ سے آدم نے خود کو جنت میں رہنے کے قابل نہیں سمجھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صناعی کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اس کو اسفل السافلین میں پھینک دیا. یہ آیت ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی اس کا قوام بڑا احسن بنایا. ثم اور پھر ردد نہ ہو, اور پھر اس نے رد کر دیا سارے سسٹم کو فی اسفل السافلین, گھٹیا سے بھی نیچے گری ہوئی حالت کی خاطر. یعنی جب کشش کے رشتے میں توازن نہیں رہا, اب یہ دیکھیں توازن کا لفظ آیا, یعنی آپ کو دنیا چلانی ہے لیکن اپنا تعلق اللہ سے بھی رکھنا ہے, یہ ہے توازن. تو جنت نے آدم کو رد کر دیا. یعنی جیسے آپ رسے پہ چل رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بیلنس یور سیلف, اگر بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو آپ رسے سے گر جاتے ہیں. تو سملرلی اگر ہم کشش اور گریز کی ان طاقتوں میں بیلنس نہیں رکھتے, یا ہمیں دنیا, اگر ہم کشش کے زون میں زیادہ گریں گے اس طرف تو پھر دنیا چھوٹ جاتی ہے. تو یہ بیلنس توازن رکھنا ہوتا ہے. تو جنت نے آدم کو رد کر دیا. تسخیر کائنات کے فارمولے میں یہ بات پوری طرح واضح کر دی جاتی ہے کہ جس طرح آدم نے کشش سے گریز کر کے اپنے اوپر ملکوتیت کے دروازے بند کر لیے, اسی طرح گریز کر کے وہ کشش میں داخل ہو کر آدم کے لیے عالم ملکوت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ کرنا ہے صرف اتنا سا, یعنی کشش اور گریز اس کی خاطر سارا نظام جو ہے ان مقداروں میں توازن سیکھنا ہے ہمیں. اب آگئی بات, یہ صفحہ نمبر جی آ جائیں 175 پہ, 175 پہ, یہ میں نے سکپ جان کے کیا تھا. اس میں نور اور نسمہ کا ٹیبل دیا گیا. اب غور کریں کہ اس میں چار چیزیں بیان ہوئی ہیں, ان چار چیزوں کے نام کیا ہیں؟ علم قلم, علم القلم, لوح محفوظ, عالم تمثال اور عالم ناسوت. علم القلم سے ایک تیر دکھایا کہ یہ اصل میں نور مفرد ہے, اور پھر ایک تیر کا نشان بتایا کہ یہ نور مفرد جو ہے یہ لا تناہیت کی صفات ہیں, لا متناہی صفات ہیں, ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی صفات کی تعداد کا بھی کوئی پتہ نہیں اور پھر صفات کی لمٹس کا بھی کوئی پتہ نہیں. یہ کیفیت جو ہے اسے نور مفرد کہا ہے اور اسی کو علم القلم کہتے ہیں. اب جب علم القلم کا نیچے دوسرا رخ جو ہے وہ ہے لوہے محفوظ, یعنی لام اتنا ہی صفات جہاں ڈسپلے ہونا شروع ہوتی ہیں وہ ہے لوہے محفوظ, اور لوہے محفوظ کے سامنے کیا لکھا ہے؟ نور مرکب. اور اخذ شدہ صفات, یعنی وہاں سے جو صفات ہم نے اخذ کی ہیں یعنی مخلوق کے لیے اللہ نے مختص کر دی ہیں, وہ صفات نور مرکب کہلا رہی ہیں. اسی کو نسمہ مطلق بھی کہتے ہیں. چلیں یہ ایک ایکسٹرا بات ہے. اب लोहे महफूज का दूसरा रुख जो है वो निचला रुख, वो है आलम तिमसाल, और उसका दायरा देखें किस तरफ तीर का निशान है, इसे कहते हैं नस्मा मुफरद। और ये क्या है? ये फर्द का तस्वुर है, इसी को आलम जिन्नात कहते हैं। ये आलम तिमसाल भी है और ये नस्मा मुफरद जिन्नात। नूर मुरक्कब जो है अखल शुदा सिफात, ये आलम मलकूत है। अब आलम तिमसाल के नीचे आलम नासूत है और इसका दायरा की जो एरो दिखाया गया वो नस्म मुरक्कब है। और ये क्या है? ये है फर्द का जहूर। अब इसको दूसरी तरह पढ़ें। इल्मुल कलम के नीचे लोहे महफूज है, लोहे महफूज के नीचे आलम तिमसाल है, आलम तिमसाल के नीचे आलम नासूत है। इल्मुल कलम नूरे मुफरद है, लोहे महफूज नूरे मुरक्कब है, आलम तिमसाल नस्म मुफरद है और आलम नासूत नस्म मुरक्कब है। अब ये इल्मुल कलम जिसको नूरे मुफरद का है, ये लामितनाही सिफात हैं। और फिर जब इन लामितनाही सिफात में से कुछ सिफात को अल्लाह ने अखज करके डिस्प्ले के लिए चुन लिया तो वो अखल शुदा सिफात कहला रही हैं, उसी को नूरे मुरक्कब कहते हैं। ये अखल शुदा सिफात फर्द का तसव्वुर बना रही हैं, इसी को नस्म मुफरद का है। अगर ये हेवले में कायम हो जाएं, ये तसव्वुर जो है तो ये जिन्नात कहलाते हैं। और यही फर्द का तसव्वुर अगर मादियत में आलम नासूत में मजहर बन जाए, उसका जहूर हो जाए, तो ये फर्द का जहूर हो गया। ये टोटल डेफिनेशन है नूर और नस्मा का फर्क समझाने के लिए कि नूरे मुफरद और नूरे मुरक्कब ये मलकूतियत के आला जोन है और नस्मा उसका फिर दो नस्मा मुफरद है और नस्मा मुरक्कब है। इंसान चूंकि नस्मा मुरक्कब में कैद है इसलिए वो नस्म मुफरत से भी वाकिफ हो सकता है और नस्म मुतलक से भी और फिर उससे बढ़कर नूरे मुफरत से भी। मैंने नूरे मुरक्कब को नस्म मुतलक का लफ्ज बोला है और नस्म मुतलक से ऊपर नूरे मुफरत कहा है। ये टोटल 12 लफ्ज है। असल बात सिर्फ ये है कि ये चार ही चीजें हैं, वही चार नहरें हैं जिनको नहर तस्वीद, नहर तजरीद, नहर तशहीद और नहर तजहीर कहा जाता है। इन्हीं चार चीजों को वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास कहते हैं। यही चार चीजें अगर आपको अजबर करनी हैं तो आपका जहन इस सांचे में ढलता चला जाएगा। ये चार दर्जों को समझना है, चार दर्जों को इंशाल्लाह ये सब क्लियर होता चला जाएगा। यहां पे मेरा ख्याल है कि आई शुड स्टॉप। जी ठीक है जी, यानी इस चैप्टर का खुलासा क्या बना के आदमी के अंदर मलकूतियत और बशरियत दो सिफात है, ठीक है जी, दोनों का ये मुरक्कब है। अगर ये गुरेज कर रहा है तो ये बशरियत की तरफ कशिश कर रहा है, अगर ये बशरियत से गुरेज कर रहा है तो ये मलकूतियत की तरफ कशिश कर रहा है। बस इतनी सी बात समझने की है कि हमें जाहिरी दुनिया में कितने इनहमाक दरकार है और बातनी दुनिया में कितना होना चाहिए। ठीक है जी।